आज के मुख्य समाचार जय भारद्वाज के साथ। विक्टोरिया के विवादास्पद होटल क्वारंटीन प्रोग्राम के बारे में अंतिम रिपोर्ट अब दिसंबर में। न्यू साउथ वेल्स की कोर्ट ने चिली की महिला एड्रीना रिवास के प्रत्यार्पण की अनुमति दी और इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टॉप पर। प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार से। विक्टोरिया के होटल क्वारंटीन की जांच की अंतरिम रिपोर्ट नवंबर में आएगी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। इंक्वायरी कमेटी के अनुसार होटल क्वारंटीन प्रोग्राम के लिए कौन जिम्मेदार था, इस बारे में रिपोर्ट 31 दिसंबर को आएगी। सबमिशन की तारीख निकलने के पश्चात सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त दस्तावेज के कारण प्रीमियर को तारीख आगे बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। श्री एंड्रयूज कहते हैं कि इंक्वायरी को महत्वपूर्ण काम के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।
That is the request that's been made. This is an independent process. It's a board of inquiry charged with a very important task, and there was no sense in my mind that we wouldn't agree to the request that they had made.
विक्टोरिया के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम की जांच संसदीय इंक्वायरी द्वारा की जाएगी, जिससे इसके कोरोना वायरस आउटब्रेक से लड़ने की क्षमता का पता चल सके। विक्टोरिया की संसद के ऊपरी सदन ने बुधवार को इस बारे में प्रस्ताव पारित कर विक्टोरिया में कोविड-19 संक्रमण से लड़ने की तैयारी की परख का फैसला लिया। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले से बेहतर हो चुकी है और अमेरिका के डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के वेबिनार में कहा था कि वे विक्टोरिया के मास्क जरूरी करने के नियम से प्रभावित हैं।
I really wish that we could transplant that kind of mentality here, because masks in the United States had almost become a political statement.
न्यू साउथ वेल्स में 4 नए कोरोना वायरस संक्रमण मिले हैं, जबकि एक विदेश से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। अधिकारी बताते हैं कि 3 नए मामले एक ही परिवार के हैं और स्रोतों की जांच की जा रही है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जोमी मैकोंटेन के अनुसार मार्क फवाद इस्लामिक स्कूल के 2 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए।
The school will be cleaned and will be non-operational for 14 days. Contact tracing and investigations are underway.
Transport Workers Union आज बैठक कर कतर की राजधानी दोहा में ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के साथ कथित खराब व्यवहार की जांच के लिए दबाव बनाएगी। कतर की सरकार ने महिलाओं की इन्वेसिव तरीके से पड़ताल की जांच के आदेश दे दिए हैं। विमानन कर्मियों का कहना है कि वे इस घटना के कारण कतर एयरवेज के विरुद्ध कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेबर पार्टी की सीनेटर पेनी वोंग ने विदेश मंत्री मैरी स्पेन की इस घटना की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया।
And I think it's an expression of the response Australians have to this incident. We don't expect our citizens to be treated like that. We don't expect that anybody should be treated like this.
खबर भारत की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत प्रदेश के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक 53.54% मतदान हुआ। इस बात की जानकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पत्रकारों को दी। जबकि पहले चरण के इस चुनाव में भाग आजमा रहे कुल 1067 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इन उम्मीदवारों में से 114 महिला प्रत्याशी भी हैं। यही नहीं, पहले चरण के मतदान में 35 संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र थे, जबकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। बिहार चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 71 में से 35 पर अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं उसकी सहयोगी बीजेपी ने 29 पर अपना दम दिखाया, जबकि विपक्षी राजद ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में एक और विधानसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, वहीं इससे इतर सेशल्स में एक बिहारी मूल के व्यक्ति के हाथों सत्ता आई है। जी हां, भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को सेशल्स के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री राम कलावन को बधाई दी। राम कलावन सेशल्स की विपक्षी पार्टी के नेता हैं। सत्ताधारी यूनाइटेड सेशल्स पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने में 43 साल का समय लगा। सेशल्स को 1977 में मिली आज़ादी के बाद से यूनाइटेड सेशल्स पार्टी सत्ता में थी। श्री राम कलावन ने अपने प्रतिद्वंदी डेनी फोरे को जोरदार तरीके से हार का स्वाद चखाया। 3 दिनों तक चली वोटिंग के तहत 74,634 योग वोटर्स में से 88% से ज्यादा ने मतदान किया। वर्तमान चुनाव में श्री राम कलावन को 54.9% वोट हासिल हुए। श्री राम कलावन पेशे से एक पुजारी हैं। उनके दादा बिहार के गोपालगंज से आकर सेशल्स में बसे थे। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 70.52 अमेरिकी सेंट्स और 52.37 भारतीय रुपये। खेल की खबरों में, आईपीएल के 13वें सीजन के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी। बुधवार रात अबू धाबी में मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से मात दे दी। मुंबई ने 19.1 ओवरों में 5 विकेट पर 167 रन बनाए और जीत का लक्ष्य 165 हासिल कर लिया। मुंबई की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे, जिन्होंने नाबाद 79 रन की जोरदार पाली खेली। इसके पहले मुंबई ने बेंगलुरु को जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी की बदौलत 164 रन पर रोक दिया था। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली मौजूदा सीजन की पहली टीम बन गई। मुंबई की ये 8वीं जीत रही। इस जीत के बाद मुंबई 12 मैचों में 16 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि आरसीबी इतने ही मैचों में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के भी 12 मैचों में 14 अंक हैं, लेकिन वे नेट रन रेट के आधार पर तीसरे स्थान पर हैं। प्रस्तुत है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी शुक्रवार को पर्थ में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री। एडलेड में बारिश कुछ रुकेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री। मेलबर्न में रुक रुक कर बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। हुबर्ट में आंशिक बादल, अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। कैनबरा में बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में भी बारिश की संभावना, 21 डिग्री अधिकतम तापमान और 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।